वर्स 54, ये वाला अच्छा है, यहाँ पे नई चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे शंकराचार्य कह रहे हैं कि खुद को जानने से बड़ा और कोई भी अटेनमेंट नहीं है, कुछ भी उससे बड़ा है ही नहीं। तुम अगर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन जाओ, है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाओ, वो भी उसके आगे कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। पहले तो तुम देखो हम कितने सालों के लिए बनोगे, 5 साल के लिए, है ना, उसके बाद जब डेथ हो जाएगी उसके बाद तो एक्स प्रेसिडेंट ही कहलाओगे, है कि नहीं। पर जो तुमने ज्ञान, तुमने अपने आप को जाना है, जो तुम्हें ज्ञान हुआ है वो हमेशा के लिए है, इट इज़ फॉर एवर। और इवन इन्होंने तो मजाक में ये भी बोला है कि इस लाइफ टाइम में भी उसको तो एक्स प्रेसिडेंट बोलेंगे लेकिन तुमको स्वामी जी ही बोला जाएगा हमेशा के लिए, तुमको कभी एक्स स्वामी जी नहीं बोला जाएगा, है ना, जबकि प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हो जाएगा। खैर वो तो ऑन द लाइटर साइड है, बट द थिंग इज कि नथिंग एंड नथिंग कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट देन नोइंग योर ओन सेल्फ, देर इज़ नथिंग लाइक दैट। वाई? बिकॉज ज्ञान नेवर डाइज, ज्ञान का कभी भी ख़त्म नहीं होता। और इससे ज़्यादा आनंद और किसी भी चीज़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सांसारिक खुशियाँ हैं, सांसारिक सुख हैं, वो तो बस बिल्कुल आएंगे और चले जाएंगे, है ना। एक जैसे नए लड़का और लड़की की शादी होती है तो उनको लगता है अरे हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, बहुत प्रेम है, और थोड़े ही सालों के बाद सब बदल जाता है, होता है कि नहीं। उसके बाद कुछ प्रेम वेम कुछ नहीं। वो कहते हैं उसके बाद आदमी आता है आश्रम में, बीवी को घर छोड़ के बोलता है अभी मैं बहुत सुखी हूँ, और वही बीवी अकेले आती है हस्बैंड को छोड़ के बोलती है अब मैं बहुत सुखी हूँ आश्रम में, वही जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। फिर क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अच्छा लोगों को बहुत होता है, अरे बच्चा हो बच्चा हो बच्चा होता है, बड़े खुश होते हैं, लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो माँ बोलती है हाँ थैंक गॉड ये स्कूल गया, है ना, क्योंकि वो घर में इतना परेशान करता है। अभी कोविड ने सबने देख लिया कितने बुरे हाल थे, एवरीबडी वॉज वेटिंग यार बच्चे स्कूल जाएँ, स्पेशली इनके छोटे बच्चे हैं। तो वही तुमको, देखो कोई भी चीज़ एक समय में बहुत प्रेम दे रही है लेकिन वही चीज़ दुखदायी भी हो जाती है, वही चीज़ जो सुख दे रही है वही दुख देने लगती है। इस पर तो हमने बहुत सारे सेशंस करे थे, है ना, वो रसगुल्ले का, समोसे का, हर चीज़ का, कोई भी चीज़ सिर्फ थोड़ी देर टेम्परेरीली अच्छी लगती है बस, उसके बाद नहीं अच्छी लगती, कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो क्या है जो हमेशा अच्छा लगता है? वही मैं, अपने आप को जानना, उस ज्ञान में रहना, बस वही है। तो फिर से शंकराचार्य कहते हैं कि उसको जान लो, रियलाइज दिस सुप्रीम ब्रह्मन, होल्ड द ब्रह्मन इन योर इंटेलेक्ट। नाउ व्हाट डज दिस मीन यू मे आस्क? व्हेन योर इंटेलेक्ट बिकम्स टोटली रिफाइंड, व्हेन इट बिकम्स फ्री ऑफ ऑल एफ्लिक्शंस, व्हेन द इंटेलेक्ट बिकम्स कंप्लीटली स्टिल, दिस इज नोइंग एज होल्डिंग ब्रह्मन इन द इंटेलेक्ट। तो हम बोलते हैं ना, जब मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब वो उस ब्रह्मन को होल्ड कर पाएगी। जैसे हमने पिछली बार किया था ना कि हाथ जो है अगर हिलता रहेगा तो अगर आप पानी का ग्लास भी नहीं पकड़ पाओगे, पानी गिर जाएगा। ऐसे ही मन और बुद्धि जब स्थिर हो जाएंगे तो उस आत्मन को होल्ड कर पाएंगे। तो वही शंकराचार्य बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि में इसको स्थिर कर लो, स्थिर हो जाओ। फिर वो कहती हैं कि ये इतना छोटी सी बुद्धि इस ब्रह्मन को कैसे होल्ड कर सकती है, कर सकती है क्या? जैसे कि मैंने अगर अपने हाथ में ये किताब उठाई हुई है तो कौन ज़्यादा बड़ा है, हाथ बड़ा है कि किताब बड़ी है? किताब बड़ी है ना, किताब, हाथ इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हाथ स्ट्रॉन्गर है तभी किताब को उठा पा रहा है। अगर मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ तो हाथ स्ट्रॉन्गर है, किताब, ये फ़ोन छोटा है तभी तो उठा पा रहा है। जो चीज़ उठा पाए वो बड़ा होना चाहिए उठने वाली चीज़ से, है ना। तो अब जैसे मैं अपने हाथ में एलिफेंट को तो नहीं उठा सकती, एक हाथी को तो नहीं उठा सकती, इवन एक कुत्ते को भी नहीं उठा सकती एक हाथ में, तो मतलब वो ज़्यादा बड़ा है। तो अगर मेरा हाथ एक कुत्ते को भी नहीं उठा सकता तो बुद्धि इतने बड़े आत्मन को कैसे उठा सकती है? यहाँ पे वो ये बात कर रही है, कैसे उठाएंगी, है ना। तो इवन जब हम बोलते हैं कि बुद्धि स्थिर हो जाए तब वो उसको उठा सकती है, तो असल में उसका मतलब ये है, जब बुद्धि स्थिर होती है, मन स्थिर होता है, वो रहते ही नहीं है, वो गायब हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो भी मन उसी में चले जाते हैं, सेल्फ में ही हो जाते हैं, आत्मन में, तभी हो सकता है ये। तो आश्रम में उनके यहाँ एक कोई, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ना टोकरियों में भगवान को लेके घूम रहे होते हैं, देखे हैं, काफ़ी लोग कैरी करते हैं। इनफैक्ट अभी जब मैं उस दिन दिल्ली से आ रही थी तो एक साथ में एक पूरी फैमिली थी, उन्होंने एक टोकरी में कृष्ण जी उठाए हुए थे। तो वो कहती हैं कि मैंने उसको हंस के बोला, अरे जिसने पूरे संसार का भार अपने कंधों पे उठाया हुआ है, तुम उसको उठा के घूम रही हो, कोई कृष्ण लेके घूम रहे होंगे, है ना, उनके यहाँ पे। तो तुम उसी को उठा सकते हो जो तुमसे कम हो, तुमसे जो ज़्यादा होगा उसे तुम कभी नहीं उठा सकते हो, ये वो बता रही हैं। और फिर वो कह रही हैं कि उस मूर्ति को घूमने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ वहाँ अगर करना ही है तो उस पर त्राटक करो, मूर्ति को सामने रख के, उसका भी पर्पज़ है, जो आइडल्स हैं, ये नहीं आप हाथ में लेके घूमते रहो, उस पर कम से कम त्राटक करो। और अगर तुम्हारी श्रद्धा है, अगर तुम्हारी आइडल मतलब तुम्हारी योगिक प्रैक्टिसेस तुम नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, तो उसके प्रति एक भाव रखो, श्रद्धा रखो, मतलब सिर्फ ऐसे घूमने करने से ये चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर उन्होंने बताया है कि कैसे तुम इस छोटी सी बुद्धि में ब्रह्म को होल्ड कर सकते हो, कैसे करोगे, वही कि जब वो बुद्धि स्थिर होगी तो वो रहेगी ही नहीं, बस यही होता है। दिस वेदांतिक नॉलेज हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल इन द भगवद गीता। द प्रॉब्लम विद यू इज़ दैट ऑल्दो यू बाउ डाउन टू द आइडल ऑफ श्री कृष्णा, यू डोंट इंटरनलाइज हिज वर्ड्स, है ना, हम भगवान कृष्ण को नमस्ते तो करते हैं पर वो कहना क्या चाह रहे हैं वो नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा, उन्होंने बात की थी एक जो वर्स चैप्टर टू में, वर्स टू ऑफ चैप्टर 13 में है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो चैप्टर 13 था, कि जो क्षेत्र है वो क्या है, तुम्हारा ये शरीर ये क्षेत्र है, है ना, ये जो मन है ये क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ कौन है, मैं, वो जो उसके अंदर रहता है, जो इसको जानता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो समाप्त हो जाएगा, जो पेरिशेबल है, जो चेंजिंग है, जो कभी है कभी नहीं है, टेम्प्ररी है, वो क्या है, क्षेत्र, दैट इज़ योर बॉडी माइंड स्ट्रक्चर। और जो उसको जानने वाला है, जो हमेशा है, जो कभी नहीं जाता, हमेशा चैतन्य है, वो क्या है, वो क्षेत्रज्ञ है, और वो तुम हो, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कहते हैं देखो, आइडल वर्शिप जो शुरुआत की जाती है, जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं ना, तो पहले आपको बिल्ली और कुत्ते की फ़ोटो दिखाते हैं, पिक्चर, ये देखो ये कुत्ता होता है, ये बिल्ली होती है, फिर या फिर चलो हाथी होता है, फिर आपको मे बी एक दिन जू में लेके जाएंगे, फिर आपको रियल हाथी दिखाएंगे कि देखो हाथी वहाँ पे वो है, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब तुमको आइडल्स दिए जाते हैं कि देखो ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है, इनके आगे प्रणाम करो, तो दैट इज़ कि आपको एक पिक्चर दिखाई गई है पहले, यू नो दैट इज़ जस्ट योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ ओनली एन इंट्रोडक्शन, वहीं पर मत रह जाओ, उसके आगे चलो, आगे बढ़ो, समझो कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उनका मतलब क्या है, है ना, तो दैट इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, लेकिन ज़्यादातर लोग वहीं पे अटक जाते हैं। तो एक और चीज़ है, जैसे लोग सोचते हैं मंदिर में चले जाएँ, मंदिर में जाके हम भगवान के दर्शन कराए या उनके आगे माथा टेक आया तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो वो कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं होता, इससे इन चीज़ों में मत घुसो तुम। पहले जो मंदिर बनाए जाते थे वो क्या होता था कि वहाँ पे लोग बैठकर या तो ओम चुपचाप, वो जो ओम का वहाँ पे जो टेंपल्स की कंस्ट्रक्शन होती थी, आपका जो ओम का वहाँ पे ध्वनि चल रही है उसको एब्जॉर्ब करो, या फिर टेम्पल का मतलब होता था कि डिस्कोर्सेज गिवन बाय एनलाइटेंड मास्टर्स, जिन्होंने जाना है उनका जो प्रवचन चल रहा है वो मंदिर होते थे, ना कि बस आप जाओ और मूर्ति के आगे मत्था टेक के आ जाओ। फिर उन्होंने बोला है कि इवन राम और कृष्ण के टाइम पर भी मंदिर होते थे, और उन मंदिरों में क्या होता था, सिर्फ एक शिवलिंग, सबसे ज़्यादा पॉपुलर इफ यू सी हमारे यहाँ शिवलिंग है, तब भी शिवलिंग होते थे। और शिवलिंग का मतलब समझो क्या होता है, देखो शिवलिंग में ना मुंह होता है, ना आँख होती है, ना कान होते हैं, नाक होती, कुछ भी नहीं होता है ना, और वो पूरा एक बस एक लिंग जैसे है। इसका क्या मतलब है, ये निराकार का रूप बनाया गया है, एक तरह से ये बताना कि गॉड हैज़ नो फॉर्म, वो निराकार है ना, और ये भी नहीं वो कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है वो भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अनंत है, ना उसकी बिगनिंग है ना उसकी एंड है, कुछ भी नहीं है। सो व्हेन यू ट्रेस द सर्फेस ऑफ द शिवलिंग देर इज़ नो स्टार्ट पॉइंट नो एंड पॉइंट। आप शिवलिंग पे कभी देख के नहीं बोल सकते कि ये इसका अभी हम हाँ वो उसके ऊपर लाइनें लगा के और ये सब कर देते हैं, बट एक्चुअली इफ़ यू लुक एट अ शिवलिंग यू डोंट नो उसका ऊपर क्या है नीचे क्या है बिगनिंग क्या है एंड क्या है, नहीं जान सकते है ना। शिव मीन्स ब्रह्म एंड ब्रह्म मीन्स आय, और वो कहते हैं इवन जो सबसे पुराने जो भव्य मंदिर थे इवन मध्य प्रदेश में चोला किंगडम के, वहाँ पे भी सिर्फ शिवलिंग मिलता था, देर इज़ नथिंग बट शिवलिंग, ना प्रीस्ट होते थे ना रिचुअल्स होते थे है ना, कुछ भी नहीं होता था। तो फिर क्या हो गया, क्यों बनाए गए वो? तो पहले क्या था, पहले जो थे जैसे हमने पहले भी ये बात की थी, जो बुद्धि थी वो बहुत तेज़ होती थी पहले ज़माने में, प्योर इंटेलेक्ट वॉज देयर, तो जो ज्ञान था लोगों में ज़्यादा था, लोगों की बुद्धि बहुत तेज़ थी, तो इस सिंबल से बस एक सिंबल दे दिया उसी से ही लोग समझ जाते थे कि हाँ ये निराकार है उसको नहीं जाना जा सकता है, इट वॉज इनफ टू एक्सप्लेन थिंग्स। लेकिन समय के साथ जैसे लोगों का मन और बुद्धि नीचे गिर गया है, उसकी क्वालिटी नीचे आ गई है, इसलिए क्या हो गया है, इतने सारे रिचुअल्स, इतनी सारी चीज़ें बताई जाने लगी हैं, इतनी सारी बाकी चीज़ें आ गई हैं उसके अंदर। एंड विद फर्दर इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन आइडल्स हैड टू बी मेड, तो हम एक एक लेवल फिर नीचे आते जाते हैं उससे, तो वो शिवलिंग से हमने मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी, फिर मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी, फिर उसके रिचुअल्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जैसी बुद्धि होगी उसी के हिसाब से बताया जाएगा। अब ये देखो ना कि कोई भी बड़ी चीज़ होती है, जब हम एक छोटे बच्चे को बताना होता है तो हमें उसके लेवल पे आना पड़ता है कि उसको क्या बताएं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी लेवल्स डाउन हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कथो उपनिषद में एक 8 साल का नचिकेता भगवान के बारे में सवाल पूछता है यमराज को, तो यमराज उसे कोई मूर्ति नहीं पकड़ाते वहाँ पे है ना, यमराज क्या बताते हैं उसको कि वो जो हर जगह है और जो सब में है ब्रह्म, वो ही तुम हो, वही है ब्रह्म और वही तुम हो, और वो 8 साल का बच्चा इतना शार्प है कि वो समझ भी गया वहाँ पे, उसको वो समझ में भी आ गया, ही अंडरस्टूड इट इमिजिएटली विदाउट एनी डाउट्स है ना, हम लोगों ने एक कहानी में सुना है। तो जो हमारे जितने भी पुराने ऋषि हैं वशिष्ठ वाल्मीकि वगैरह, उनको हमेशा दिखाया जाता है कि आंखें बंद करके बैठे हुए हैं मेडिटेटिंग ऑन ओम ऑन देयर ओन सेल्फ। अब ये ओम पे भी आप ये मत सोचिए कि वो ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, नहीं, ओम का भी मतलब यहाँ पे है कि वो खुद में ही स्थापित हैं, वो ही ओम है, दैट ओनली इज़ द ओम। ओके, द हाइएस्ट नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ द ब्राह्मण, ब्रह्म या आत्मन या सेल्फ वही सबसे बड़ा ज्ञान है। और वो जो ये जो है ना आँख बंद करके बैठे हैं, एक और वो है ना कि पार्वती जी ने शिव जी को पूछा था कि बाकी सब लोग तो आपका ध्यान करते हैं जब आँख बंद करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं जब आँख बंद करते हैं, तो शिव जी ने बोला मैं स्वयं का ही ध्यान करता हूँ, स्वयं का ही ध्यान करता हूँ। तो यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि जितने भी ऋषि जो बैठे हैं वो स्वयं के ही ध्यान में हैं, और आप भी जब जानोगे तो किसी और का ध्यान नहीं करोगे, स्वयं का ही ध्यान करोगे। लेकिन स्वयं का मतलब ये ईगोइस्टिक नहीं होना है कि ये शरीर मन ये जो है, नहीं, नॉट दिस, द रियल सेल्फ जो आप हो हमेशा।